राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 9 अप्रैल 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे दिल्ली में हुआ। राम।
पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
तो जो ग्रंथ होते हैं महात्म्य छोटा होता है, ग्रंथ बड़ा होता है। भागवत 18,000 है, 12 स्कंध है और 337 अध्याय है। इतना बड़ा ग्रंथ है, उसके 6 अध्याय 1 गले 4 अध्याय 1 गले ऐसा महात्म्य है। गीता के 18 अध्याय है, तो 18 अध्यायों का मालूम 18 अध्याय में पद्म पुराण में 1 जगह है, बड़ा पुराण में है, योग वशिष्ठ में है, वैष्णव तंत्र सार में है, कई जगह भगवद गीता का महात्म्य है। पद्म पुराण में 18 अध्याय है, गीता के 18 अध्याय में 7 श्लोक है, उसकी कोई 1200 श्लोक होंगे। तो गीता का महात्म गीता से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये भगवान की खुद की वाणी है। ऋषियों की, मुनियों की, पंडितों की, उनकी वाणी है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। गीता सुगीता कर्मविद्या किमं यही शास्त्र विस्तृति यहाँ स्वयं पद्म भगवान के कमल नाभि कमल से कमल कमल से ब्रह्मा ब्रह्मा से चार चार मुख चार वेदों से चारों का उच्चारण हुआ और ये स्वयं भगवान के मुख से उच्चारण हुई। तो इसका महात्म बहुत है। उसे पढ़ा कि 1 श्लोक 2 श्लोक 4 श्लोक भी कोई दूसरा पढ़े, आधा श्लोक भी पढ़े रोजाना तो कल्याण हो जाए, ऐसी बात आई है। फिर मैंने वो बात सुनाई एक हेडमास्टर से, तो उन्होंने एक बात पूछी, कई प्रश्न पूछते हैं मेरे। उन्होंने पूछा कि मनुष्य में आकर कम से कम कितना काम कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा कम से कम काम इतना कर देना चाहिए मर करके पीछे मनुष्य हो जाए, मनुष्य से गिरे नीचा मेरे को मर जाए 14 किलो में मिल जाए और कहीं जाकर पीछा मनुष्य हो जाए। इतना कम तो कम से कम ही कर ही जाना चाहिए जिससे गिरे नहीं, क्योंकि तो उपाय क्या है ये पूछा। तो ये गीता माता गीता पाठ समायु तो मृतो मानुषता मृदे गीताभ्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्ति उत्तमम। गीता पाठ समायुक्त जो पाठ करता है वो मरकर के पीछा मनुष्य होता है, और मनुष्य होता है इतना ही नहीं फिर गीता अभ्यास करके मुक्ति को प्राप्त करता है। तो उसका उपाय क्या हो, गीता का पाठ करना, गीता पढ़ना। तो मेरी कुछ वो बात लगी, कई वर्षों तक मैंने कुछ ख्याल नहीं किया, पीछे कुछ वर्षों पहले ख्याल आया कि रोजिना इतना श्लोक पढ़े तो क्या करे। तो गीता में भगवान के खुद के अवतार के श्लोक है ये पांच श्लोक। तो ये पांच श्लोक रोजाना पढ़े तो रोजाना पाठ हो तो आप साहब कंठ सुनाएगा लोगों के और ये आप साहब याद होगा। तो ये रोजाना पाठ करते रहे, चलते फिरते उठते पाठ करते रहे तो कम से कम मनुष्य ही तो मिले मरने के बाद। इस उद्देश्य ने ये पाठ किया अपना सत्संग हो वहां पर पांच लोगों का पाठ करना। हमारे पहले सत्संग होता था चातुर्मास जहाँ करते थे हम पहले दस लोगों का पाठ कम से करके वो गीता पूरी करते थे। अब कहा भाई वो दस लोग सत्संग के समय ना हो तो कम से कम पांच लोग हो जाए रोजन वही श्लोक हो तो याद हो जाएंगे कंठस्थ हो जाएंगे। रोजाना पाठ करने से श्लोक कंठस्थ हो जाते हैं। एक बात और बतावे याद आ गई, किसी को गीता पूरी याद है और वो याद है कितने रोजाना पाठ करते रहे तो भूल कैसे सकते हैं? तो भूलने का ही तरीका है, याद के तरीके होते हैं, भूलने का तरीका बताता हूँ। कभी जी ना पुस्तक पर ही पाठ करो कंठ पाठ नहीं होगा। फिर रोजाना पाठ करते रहो पुस्तक पर। ये बड़ी भूल करते हैं जो कंठस्थ होने के बाद पुस्तक से पाठ करते उसमें भूल ही हो जाती है और जिनको याद नहीं है उनमें पाठ करो याद हो जाता है। ये तरीका है वास्तविक। पांच लोग ये याद कर लो और चलते फिरते इसका याद करते रहो, इसके लिए ये पांच लोग रचना पाठ कराया जाता है। न स्वदेशम पवित्र में विद्यते स्वयं योग संसद कालीनात्मी विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज है नहीं और उसकी प्राप्ति योग से संसिद्ध होने पर प्राप्त होती है, तुरंत प्राप्ति हो जाती है। ये कालीन पर स्वयं योग संसिद्ध कालीन आत्मनिबंधति व्याकरण पढ़े हुए भाई समझ सकते हैं। ये कालीन तृतीय विभक्ति है, ये तृतीय विभक्ति कर्ण में नहीं है। कर्तृकर्ण तृतीय कर्ता में और कर्ण में तृतीय होती है अनुक्ति कर्तृ कर्ण। ये काले में अवश्यम भावी में काला ध्वनो रपंत संयोग अत्यंत संयोग में तृतीय होती है। तो अत्यंत संयोग में तृतीय होती है, ये तृतीय होती है क्या
सुनते
अपवर्ग तृतीय अपवर्ग अर्थ में तृतीय होती है। अपवर्ग मार्ग क्या है? आपका अभुत सिद्ध परमात्मा तत्व की प्राप्ति है। तो जहाँ परमात्मा की प्राप्ति होती है वहाँ तृतीय का अर्थ है कि अवश्यम भाव प्राप्ति होगी, जरूर प्राप्ति होगी, ये तृतीय का अर्थ है। तो योग संसिद्ध योग से संसिद्ध होने पर स्वयं की प्राप्ति होती है। ये एक बात मार्मिक है, प्रायः व्याख्यान में प्रायः कथा में प्रवचन में कर्णों को कहते हैं कर्णों से प्राप्ति होती है। मानो बहिकर्ण कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण, ये तीन तरह के कर्ण है। कर्ण नाम साधन, क्रिया की सिद्धि के लिए जो अत्यंत उपकारक हो उसको कर्म कहते हैं। तो कर्ण से प्राप्ति होती है। फिर भक्ति में कहते हैं कि भक्ति होती है कर्ण से, भक्ति और ज्ञान दोनों कर्ण साध्य नहीं है। इस वास्ते स्वयं योग संसद कार्य स्वयं संसद स्वयं प्राप्त होता है, स्वयं खुद जितने काम होते हैं हम क्रिया इंद्रियों से करते हैं, बाहर की सामग्री से करते हैं, पर वास्तविक तत्व की प्राप्ति है वो स्वयं को होती है, बुद्धि मन इंद्रिया अंतकरण से नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर के साधन काम के नहीं है, ऐसा तात्पर्य नहीं है। साधन सब काम के, धन भी साधन हो जाए जो बाहर है हमारे पास नहीं है, उसका भी सदुपयोग किया जाए तो प्राप्ति हो जाए। सदुपयोग तो बुखार का किया जाए, घाटे का किया जाए, आफत का किया जाए, दुख का भी सदुपयोग किया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और सुख का भी सदुपयोग किया जाए तो भगवत की प्राप्ति हो जाएगी। रात में मैंने कहा था कि अपनी जो परिस्थिति, जिस भाई बहन को जो परिस्थिति मिली है वही परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। इस वास्ते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य शरीर साधनों का घर है, जो परिस्थिति मिली उसी के सदुपयोग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी विलक्षण बात है। तो कर्म तो काम के है, पर जब प्राप्ति होगी तो खुद को होगी, क्योंकि प्राप्ति न होने से दुख है वो खुद को ही है। ये शरीर को दुख नहीं है, इंद्रियों को दुख नहीं है, अंतकरण में दुख भान होता है, पर दुखी स्वयं होता है, दुखी अंतकरण में ही होता है। ख्याल करना जरा, दुख का भोगी स्वयं होता है, खुद दुखी होता है। तो खुद को ही तत्व ज्ञान होगा, खुद को ही प्रेम होगा, कर्ण से नहीं। कारण से दुख का ज्ञान होता है, सुख का ज्ञान होता है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्वेत प्राप्यता प्रियम स्थिर बुद्धि संबोधो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्षित न हो, और अप्रियम प्राप्य, अप्रिय को प्राप्त करके न उद्वेष उद्वेजित उद्वेग उद्विग्न न हो। मानो सुख की प्राप्ति में हर्षण हो और दुख की प्राप्ति में उद्वेग न हो, भय न हो, दुख न हो, ऐसी स्थिति होने पर स्वयं को परमात्मा की प्राप्ति होती है। और सुखी दुखी होता रहता है उसको तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इस वास्ते आत्मने कहा समत्वम योग उच्यते, समता रहना इसका नाम योग है। गीता इसको योग मुख्य मानती है, और कई तरह के योग है पर समता योग है। मानो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आने पर सुखी दुखी न हो, सुख दुख का ज्ञान अलग चीज है, सुख दुखी होना अलग चीज है, ज्ञान होना और चीज है। ज्ञान दोषी नहीं होता है, दोषी विकार होता है, और विकार स्वयं में होते हैं। स्वयं में विकार होते हैं तो गड़बड़ी होती है। यदि भी ये स्वयं शुद्ध में विकार नहीं है, है अंतकरण के संयोग से, परंतु सुखी दुखी स्वयं होता है, वह अंतकरण का संबंध नहीं है, स्वयं सुखी दुखी होता है। तो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है स्वयं को। राज प्रश्न भी आया था, कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है, तो कर्ण निरपेक्ष की साधन की चर्चा बहुत कम आई है, पुस्तकों में भी कम आई है, संतों से भी मैं कम सुनी है। ज्यादा प्रचलित अंतकरण से होता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति में देरी है कि अंतकरण की अशुद्धि है, इस वास्ते देरी है, ये एक बिंदिम घोष है। मतलब दुखी पिटा दी गई है सबके लिए, क्योंकि अंतकरण शुद्ध बिना तत्व ज्ञान नहीं होता। तो तत्व ज्ञान में अंतकरण कारण नहीं है, कर्ण के द्वारा तत्व ज्ञान नहीं होता, स्वयं को होता है। इस वास्ते कर्ण निरपेक्ष साधन है, तत्व है कर्ण रहित, और साधन है कर्ण निरपेक्ष रहित में मेरी प्रश्न में क्या फर्क है। जैसे कोई कहे कि अन्न जल मिलता है पैसे होने से अन्न मिलता है, तो पैसे सापेक्ष है ये कहा जाए तो पैसों से मिलता है, पर पैसा सापेक्ष दिव्य सापेक्ष नहीं है। अन्न खेती करने वालों को मिलता है, उन पैसे घर तो ही करने पड़ते हैं, तो पैसों से अन्न मिलता है बात ठीक है, कर्मानु द्रव्य सापेक्ष ही हो ऐसी बात नहीं है। ऐसे परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्ण सापेक्ष हो ये बात नहीं, कर्ण कर्ण के भी अपेक्ष मानो कर्ण के अधीन नहीं है, कर्ण रहित तो नहीं है पर कर्ण की अपेक्षा नहीं। जैसे द्रव्य मिलता है द्रव्य से अन्न मिलता है, परंतु अन्न द्रव्य सापेक्ष नहीं है, द्रव्य से ही मिलता हुआ अन्न अन्न और वैसे मिलता, खेती करने से अन्न मिल जाता है और नौकरी करने से वो अन्न लेता अन्न केवल अन्न के बदले हो जाता है, और अन्न के बदले में साग ले सकते हैं, अन्न के बदले में कपड़ा ले सकते हैं। पहले ये था हमारे यहाँ, हमारे यहाँ सिक्के की प्रधानता नहीं थी, एक अन्न पैदा करता है, एक साग पैदा करता है, एक तेल पैदा करता है, एक तेल पैदा करता है, एक अन्न पैदा करता है। तो अन्न लेकर साग लिया है, अन्न को लेकर के कुम्हार से बर्तन भी लिया, अन्न देकर लिया है, जो वस्तु चाहिए कपड़ा भी अन्न देकर के कपड़ा लिया है। छोटे छोटे बच्चे जब सुनते हैं फल, मालिनी कहती है फल है, तो फल नहीं दौड़ते हैं तो घर में से दबा निकाल अन्न दे दिया, फल दे दिया। तो वो अन्न केवल पैसों से मिलता नहीं, वस्तुओं से भी अन्न मिलता है, परंतु पैसा भी उसमें आवश्यक है परंतु अत्यंत आवश्यक नहीं, कर्ण पैसे सापेक्ष नहीं है। ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए जप है, ध्यान है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, ये सब कारण है, परंतु असली तत्व की प्राप्ति में कर्ण नहीं है, कर्ण रहित होगा वह, कर्ण सापेक्ष होगा और तत्व खुद कर्ण निरपेक्ष तत्व है, परम तत्व वो कर्ण सापेक्ष नहीं है, ये कर्ण अंदर रह जाता है। थोड़ा व्याकरण का विषय है, ज्यादा भी छेड़ता हूं, पढ़े लिखे हो तो उनको बताएं। कर्ण है वो कर्ण है, कारण कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान आदि जो छह कारक है, तो छह कारकों में कर्तृत्व भी नहीं है, वहां पर कारकों में सब में मुख्य कर्ता है, स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र मनुष्य तो अर्थ करता, स्वतंत्र कर्ता होता है इसमें, तो कर्ता भी वह तत्व नहीं है। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्चात्म अकर्तारम से पश्यति नान्य गुणेभ्य कर्तारम, गुणों में कर्ता पर गुणों में रहता है, गुणातीत तत्व में कर्ता नहीं रहता, कर्ता भी नहीं रहता तो कर्म कैसे रहेगा। मुख्य कर्ता कर्तृत्व नहीं होता, कर्तृत्व भान रहित होता है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, ये बोध तत्व की प्राप्ति कर्तृत्व नहीं है, बुद्धि लेप नहीं है, हत्या भी से मान लो का न हम के नीते इतनी छूट नहीं है। तो कर्ण निरपेक्ष तत्व है, कर्ण को लगाओ मैं तो द्रव्य भी लगाओ, क्रिया भी लगाओ, काम भी करो, दूसरों के हित के लिए करो, उसमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये साधन है। तत्व वास्तव में कर्म निरपेक्ष है, ऐसे प्रेम तपस्या करो, ध्यान करो, चिंतन करो, जप करो, इनसे प्रेम होता है, पर प्रेम होता है स्वयं को, ज्ञान होता है स्वयं को, स्वयं क्रियाओं से रही थे, पदार्थों से रही थे, क्रियाओं से रही थे, पदार्थ और क्रिया दो प्रकृति का कार्य है, और प्रकृति से अति तत्व है, प्रकृति में पुरुषम से विद्यनादि उपभाव भी, तो ऐसा वो तत्व है। तो कर्म निरपेक्ष तत्व में जल्दी बुद्धि नहीं पहुंचती है, बुद्धि सहायता करती है, तो कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म निरपेक्ष है, कर्म सहायता करते हैं, जब भी शरण मिलता ही है, परंतु उसी कोई है तो ही मिला, ऐसी बात नहीं है, बुद्धि से ही होता है। श्लोक आता है ना प्रेम से प्रेम प्राप्ति, नो प्रेम नो नो द्वेषता प्रियम। तो अप्रिय प्रिय की प्राप्ति हो गई तो फिर न प्रेरित हर्ष क्या बाकी रहा, और उद्वेग नहीं होता अप्रिय को प्राप्त होकर के, तो अप्रिय की प्राप्ति में उद्वेग हो गया अप्रिय है। तो प्रिय और अप्रिय ये है ज्ञान, मानो शरीर के अनुकूल प्रतिकूल, इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल, मन के अनुकूल प्रतिकूल, बुद्धि के अनुकूल प्रतिकूल, सिद्धांत के अनुकूल प्रतिकूल। हम अद्वैत सिद्धांत है तो अद्वैत की बात हमारे अनुकूल पड़ेगी, द्वैत की प्रतिकूल पड़ेगी, अद्वैत बात है तो द्वैत की अनुकूल पड़ेगी, अद्वैत की प्रतिकूल पड़ेगी। तो ये सिद्धांत में भी अनुकूल प्रतिकूल, बुद्धि में अनुकूल प्रतिकूल, मन में उतनी अनुकूल प्रतिकूल, इंद्रियों में अनुकूल प्रतिकूल, शरीर में अनुकूल प्रतिकूल, पदार्थों में व्यक्तियों में अनुकूल प्रतिकूल, ये सब जगह रहेगा दोनों। तो ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व है। परमात्मा तत्व तो होता है निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंदा प्रमुचते, तो निर्द्वंद्व होता है सुखपूर्ण प्राप्ति हो जाता है। तो निर्द्वंद्व अवस्था में कर्ण नहीं है, इस वास्ते वो कर्ण रहित तत्व है और कर्ण निरपेक्ष तत्व साधन है और साध्य कर्ण रहित है। कर्ता कर्म प्रकृति का कार्य है, ये वो प्रकृति से अनहित अतिहित है। नान्य गुणे भी करता रम, और वो गुणातीत उचित है, गुणातीत है, गुण से अतीत है। उसमें गुण कैसे पहुंचेंगे, सब ये गुणों में रह जाते हैं, गंदी आदि सब गुणों में रह जाते हैं। तो उसमें हर्ष शोक न हो, राग द्वेष न हो, खुशी और दुखी न हो, तो उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। सुख और दुख है ये भोग है, भोग से ऊंचा योग है, भोग से ऊंचा तो वहां उसी प्राप्ति होती है। तो कर्ण निरपेक्ष वो तत्व है, तो स्वयं योग संसिद्ध, योग से संसिद्ध होने पर स्वयं आत्मनिलिप्त स्वयं लाभ होता है, और जरूर होता है कर्म योग के द्वारा, बिल्कुल अवसंभाव है, अवश्य होता है। अपवर्गीय तृतीया तृतीया ये कहती है। तो अब प्रेम की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, तो स्वयं के भीतर इच्छा होती है, भीतर के भीतर मैं उस तत्व को प्राप्त हूँ, तो उसकी जिज्ञासा होने पर भोगेच्छा मिट जाती है, संग्रहेच्छा मिट जाती है। रात मैंने ये बात बताई थी कि ये दो इच्छा बाधक है परमात्मा तत्व की प्राप्ति में, संग्रह करने की इच्छा और भोग भोगने की इच्छा, ये जो मनसा रहती है भीतर में, ये परमात्मा तत्व की प्राप्ति जो दूर हुई, परमात्मा की प्राप्ति ही करना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकती। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता न तया प्रयुक्त साफ, भोग और ईश्वर जो आसक्त है, पुष्ट वाणी शरीर का हमें अपहृत हो गया है, वो निश्चय व्यवसाय बुद्धि समाधि न भी दिए थे। परमात्मा तत्व में निश्चित बुद्धि नहीं होती, तो निश्चित बुद्धि कब होती है कि स्वयं के लाग लगे कि तत्व को प्राप्त करूं, तत्व को प्राप्त करूं, ऐसी लगन लगती है तो तत्व की प्राप्ति होती है। स्वयं ही प्रेम प्राप्त करूं, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, वो प्रेम भी स्वयं को होता है, इस वास्ते तपस्या के द्वारा नहीं होता। उसके लिए मेरे को संतों से बात मिली है, मैंने पुस्तकें पढ़ी है, पढ़ाई की है, पढ़ा भी हूं और पढ़ाया भी है मैंने, परंतु उनसे मेरे को ये बात नहीं मिली, शास्त्रों से संतों से मिली है। प्रेम होता है अपनापन से, ये खास बात है। अपनी चीज अच्छी लगती है, फटी हुई भी जूती अपनी अच्छी लग रही, ईमानदार की बात करूं, बेईमानी नहीं करता मैं ना। अपनी जूती फटी हुई भी अच्छी लगती, पढ़ाई बढ़िया भी अच्छी नहीं लगती, चोर को अच्छी लगती है, जैसा सब की बात कैसे कहूँ। ईमानदार सच्चा आदमी होता है, अपनी जैसी वो अच्छी लगती है, अपनी सब पर कुटिया भी अच्छी लगती है, बढ़िया बढ़िया मैन भी अच्छा नहीं लगता। तो ईमानदार को अपनी चीज अच्छी लगती है तो भगवान को अपना मान से प्रेम प्राप्त होता है। ये प्रेम प्राप्ति का खास उपाय है। और तपस्या है, दान है, पुण्य है, कीर्तन है, जप है, ये सब प्रेम प्राप्ति के साधन है। सभी साधन है, सबसे प्रेम प्राप्ति होता है। नाम जप करेगा, कीर्तन करेगा, भगवान के गुणान वाणी करेगा, सुनेगा सुनेगा प्रेम होगा। पन्नगार सुनो प्रेम सम भजन दूसरान। गरुड़ जी कहते हैं, कागुर जी कहते हैं, गरुड़ सुनो, प्रेम के समान दूसरा भजन नहीं है। अस विचार पुनी पुनी मुनि कर राम गुणगान। ऐसा विचार करके मुनि गुणगान करते हैं तो कर्फ अर्थ क्या हुआ? प्रेम के समान कोई भजन नहीं है, गुणगान करते हैं। कहां बैठी बात? एक बात सही हुई। सबसे बढ़िया तो गंगा जी है, इस वास्ते लोग जमुना जी जाते हैं। प्रेम के समान भजन नहीं है, इस वास्ते मुनि पार बार गुणगान करते हैं। तो प्रेम के समान कहना चाहिए, अब पहले गुणगान कहना चाहिए। सब गुणगान समान प्रेम नहीं, इस बार गुणगान करते हैं। तात्पर्य क्या? गुणगान करने से प्रेम होता है, भगवान जो आकर्षण होता है, परंतु प्रेम की प्राप्ति स्वयं को होती है। प्रेम में गुणों का महत्व नहीं है। साधारण आदमी भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान सर्वोपरि है, भगवान अनंत गुण है, ऐश्वर्य इसलिए, पर प्रेमी ऐश्वर्य को नहीं चाहते। भगवान से कोई चीज चाहना करते नहीं, भगवान ठीक अच्छे लगते हैं। इस वास्ते आत्मा रामास्त मुनय निर्गंथा प्युरुक्रमे कुरंती अहेतु की भक्ति इत्थम भूतगुरु हरि। जो आत्मा राम है, अपने स्वरूप में ही राग रमन करते हैं, मुनि निर्गंथा जड़ग्रंथि का भेदन हो गया है, तत्व ज्ञान हो गया है, ऐसे ही भगवान में भक्ति करते ऐसे पुरुष, क्योंकि इत्थम भूत हुआ भगवान ऐसे ही है। तो गुणों को लेकर भगवान में भक्ति करना, ऐश्वर्य को लेकर भगवान में भक्ति करना, द्रव्य के लिए भक्ति करना, पदार्थों के लिए भक्ति करना, जीने के लिए भक्ति करना, तत्व ज्ञान के लिए भी भक्ति करना, वो भी भक्ति ऊंचे दर्जे की नहीं है। तत्व ज्ञान के लिए भक्ति करते हैं, उसका तत्व ज्ञान में आदर है। धन के लिए भगवान की भक्ति करते हैं तो धन में आदर है। भक्ति एक जैसे मशीन होती है, उसे धन कमा देते हैं, ऐसे भगवान का उपयोग करते हैं कि भगवान से धन मिल जाएगा, तो मशीन जितनी आदर करे भगवान का। भगवान की भक्ति असली होती है अहेतु की, किसी कारण से नहीं। कि ऐसा कैसे हो, बिना ही कारण भक्ति हो जाती है। हाँ, आप ध्यान दें मेरी बात का। आप अपने को अच्छा मानते हैं कि नहीं? अपने को अच्छा मानते हैं, प्यारा अपने साथ में, प्यारा ही प्यार अपने साथ में है। दृष्टान देंगे, जैसे गाय है, उसने छोटा बच्चा दिया है तो बच्चे को छोड़कर चरने को ही नहीं जाती, जंगल में जाकर जाना नहीं चाहती, तो बछड़े को छोड़कर चल नहीं जाती, परंतु लाठी लेके मारने लगे तो गायों के साथ जंगल में चली जाती है और जंगल में जाकर चारा चरती है। चारा भी प्यारा लगता है, परंतु बछड़े की याद आती है, ऐसे करके घास नीचे गिर जाता है और फिर चरती है। वहां से छुट्टी पाती दौड़ती सबसे आगे पड़ती, सब गायों से आगे जाकर बछड़े पहुंचती है। तो गाय का प्रेम चारे में भी है, चरती है, पर उससे अधिक है बछड़े में, उस बछड़े से अधिक है आप में। लाठी मारे तो चल देती है। तो अपने में जितना प्रेम है वो है अनन्य, बछड़े में है मुख्य, चारे में है गौण। ऐसे परमात्मा के प्रेम करो कि धन के लिए, आर्थिक जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी चार प्रकार के भक्त होते हैं, तो जिसके लिए भगवान से प्रेम करते हैं वो मुख्य होता है, भगवान गौण होते हैं। पर हम प्रेमी भक्त भगवान के ऐश्वर्य के प्रति परवाह ही नहीं करते, बड़े भारी तो अस्सी बात हम क्या करें, बड़े हमें बड़े छोटे से मतलब नहीं है। भगवान बड़े ऐश्वर्य, उत्पत्ति से विनाशन से भूत विद्या विज्ञान से ये सब जानते उसका नाम भगवान है। हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें तो भगवान अच्छे लगते हैं, नीचे लगते हैं। क्यों लगते हैं? हमारे हैं। बच्चा जो माँ से स्नेह करता है तो माँ को सुंदर देखकर करता है, श्रृंगार देखकर करता है, कम युवती जवान इस वास्ते करता है, इस वास्ते नहीं करता है बच्चा। बच्चा तो मेरी माँ है, माँ अच्छी लगती है, और माँ को बच्चा अच्छा लगता है, वो सुंदर है, गुणवान है, विद्वान है, धनवान है, चतुर है। किस कारण से? कि बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा मन से अच्छा लगता है, तो मेरापन है। ये प्रेम में खास कारण अपने आप में आपका स्वयं का प्रेम है, स्वयं का। तो स्वयं आप अपने को जानते हैं, स्वयं प्रेम है, स्वयं में अपनापन है, तो प्रेम पैदा होता है अपनापन से। भगवान मेरे हैं किसी कारण से नहीं, वृद्ध के लिए, धन के लिए, मान बढ़ाई के लिए नहीं, भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान है। इस बात से मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई और दूजा नहीं, मेरे भगवान है। ऐसे अनन्य भाव और अनन्य प्रेम की बड़ी भारी महिमा है। अनन्य का अर्थ है अन्य प्रेम नहीं, एक बाण करुणा निदान की, सौ प्रिय जाके गति आन की। ऐसे भगवान से प्रेम केवल करते हैं तो भगवान से वशीभूत हो जाते हैं, पदार्थों के लिए पदार्थ दे देते हैं, अनिमादि सिद्धियों के लिए सिद्धियां दे देते हैं, पर भगवान के लिए प्रेम करता उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं। वो अनन्य, और को नहीं चाहते। मुक्ति तो पूछना को भी देगी, जो पूछना जिहंस या पाए लप्य साधी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघंस या पाय दप्य साधी असाधि। और जिघंस या हंसुमिच्छया मारने के लिए स्तनपान कराती है, कालकूट जहर लगा कर दी, छोटा बच्चा दिए स्पर्श हो तो मर गया, ऐसा कालकूट दे। जिघंस पाए वे दे गतिम धाती चाह, जो माता को देनी चाहिए, धाई माँ को देना चाहिए, वो गति दे दी। तो मुक्ति से जहर देने वाली पूछना को भी दे दी, तो मैया यशोदा प्यार से दूध पिलाती, उसको क्या देंगे, क्या मुक्ति देंगे? नहीं, अपने आप को दे देते हैं। मैया बांध से बंध जाते हैं, खुल नहीं सकते, दामोदर नाम हो जाता है, रस्सी बांध दिए ऊपर से। तो माँ की मर्जी है, बांधे छोड़े। संसार में तो भगवान का नाम लेने से मुक्ति हो जाए, उसको यशोदा रस्सी से बांध लेती है। तो ये प्रेम में क्या अपने आप को देते हैं, वो प्रेम अपना पद पहला मेरा है, बस मेरा पद अपना पद, इससे प्रेम पैदा होता। तो प्रेम कही, तो ये प्रेम में क्या अपने आप को देते हैं, वो प्रेम अपना पद पहला मेरा है, बस मेरा पद अपना पद, इससे प्रेम पैदा होता। तो प्रेम के सब साधन है, भजन ध्यान जप कीर्तन सत्सुन स्वाध्याय, भगवान के गुणानुवाद, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप, भगवान की महिमा, भगवान के प्रभाव गुण, सब प्रेम में कारण होते हैं। परंतु अनन्य प्रेम मेरे भगवान के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे भगवान के भी कुछ नहीं, ना तो मेरे में कोई गुण है, ना भगवान के गुण से मतलब है, हमारे तो भगवान से मतलब है। बड़ा भारी ऐश्वर्य ऐसा बढ़ावे जरूर तो नहीं है। ये गोपिकाओं का, ग्वाल बालों का कन्हैया के साथ प्रेम था, ऐश्वर्य को नहीं चाहते थे। बड़ा बड़ा ऐश्वर्य तो हम क्या करें, बड़े वो द्वारकाधीश हो गए, राजा हो गए, अच्छी बात राजा हो गए, हम क्या करें, हम तो कनुआ है, कनुआ मारे गुस्सा करे, मार बैठ करे, घोड़ा बनावे, खेल में हार जा तो घोड़ा बनो, मारने जरो सामने के घोड़ा बन बनाते, उसमें भगवान राजी होते हैं। भगवान के ऐश्वर्य से जो प्रेम करता है, भगवान को तो मेरे से नहीं करता है, ऐश्वर्य से करता है, मेरे से वही प्रेम करता है। तो वो साधनों प्रेम है, भगवान में स्वयं प्रेम हो, वो प्रेम होगा अपना पन से। मिथिला नगरी में एक ब्राह्मणी रहती थी, ब्राह्मणी के एक लड़का था और घर वाले सब मर गए तो उसका पालन कर दी थी। तो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो खेलने को जाता था बच्चों में, तो छोटे छोटे बालक थे उनकी बड़ी बहन किसी का बड़ा भाई वो गोदी में लिए था। अब इसी साथ कोई नहीं तो छोरों ने कहा तेरे कोई नहीं, मेरी बड़ी बहन है, मैं बहन की गोदी में हूँ, मेरे भैया की गोदी में हूँ, तेरे कोई नहीं है। ऐसा दो तीन साल रोने लग गया, बच्चों कह दिया ना तेरे ये नहीं है ये नहीं है, तू क्या कर रो रहा है, क्या करे क्या बच्चा और क्या करे, रोने लग गया। रोकर माँ के पास पहुंचा कि बेटा रोता क्यों है, कि माँ सब छोकरे आते छोटे छोटे उनको गोदी में कोई तो भाई ने गोदी लिया है, किसी ने बहन को गोदी लिया, बहन ने लिया है, और मेरे कोई नहीं, छोड़ा गया तेरे कोई नहीं है। बन घबराया हुआ रोता हुआ बच्चा माँ की गोदी में बैठ गया, तो माँ मेरे कोई नहीं है, मैं डर गया माँ का, बेटा क्या करूँ मैं कोई नहीं। माँ थी सीता जी की भक्त, जनकपुरी में रहने वाले सीता को बेटी मानते, हमारी बेटी है, पुरुष न सब मानते बहन, जितने वो सीता जी को मानते बहन, राम जी को मानते बहन और जीजा जी हमारी बहन है, तो वह मानते थे सीता को अपनी बेटी। तो बेटी है जो नहीं बहन है तेरे, ये दूसरे छोरे ने इनकी जो बहन है इनसे सुंदर बहन है तेरी, तेरी बहन के समान बहन वो कोई सुंदर नहीं है, ऐसी तेरी बहन है। हमारा मैं ऐसी बहन है कहाँ है, कि भैया वो अपने घर पर है, अब ब्याही गई बहन तो यहाँ कैसे रहती, तो अपने घर पर रहती है, घर कहाँ है, अयोध्या में है। माँ मैं तो अयोध्या जाऊँगा, छोरे चिराते हैं तेरे कोई नहीं है, तो मैं ही कहूँगा मेरी बहन है, मैं ही कहूँगा मैं जाऊँ। तो ही लगन लगी, माँ ने कहा बेटा अभी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो गया तो जाना, पांच साल दस दिन की बात करें, माँ अब तो बड़ा हो गया ना। उसे लगन लग गई कब माँ छुट्टी देर कब अयोध्या पहुंचू, अब तो बड़ा हो गया, माँ दो चार दिन बड़ा हो गया, ऐसी बहुत लगन चाहिए। तो कई अयोध्या जा रहे थे, उनको कह दिया भाई हमारा बच्चा भी साथ में चले, इसको साथ में ले जाओ अयोध्या याद जाते हैं। तो माँ बहन के लिए क्या ले जाऊं, तो पुरानी रीत है कसार बनाते हैं, मगध बनाते हैं, वो दिया करती है माता है अब बेटी को, तो वो दिया पुटकी बांध दी कसार की, गुड़ में बनाते हैं कसार होता है, चीनी में बनाते हैं मगध होता है, घी और आटा कर तो दे दिया पुटकी ले ली। अरे बड़ा खुशी जाना ये जाऊंगा माँ का दिया हुआ मगध दूंगा, तो बहन बहुत राजी हो जाएगी, माँ की हर की चीज है। ऐसी उम्र से चला, साथ चलते हुए साथ चलने वाले कहीं विश्राम करते थे कहीं ठहरते थे, उसी पे लगन भी है। जब टीका चल दिया मुझे पीछे रहेगी कहीं में, अब चलता जा गांव में जावे रसोई का भक्त हो गया तो माताओं को प्रेम आता बना, ये माइयों में प्रेम होता है, छोटे बालक को देखे ना अरे बेटा खा ले कुछ भोजन कर ले, माताओं के खिलाने की मन में रहती है कि बस कुछ खेला आ जाए, मेरे तो काम पड़ा है ना तो कुछ खा लो कुछ ले लो कुछ खा लो, ये इनका स्वभाव है। हनुमान जी भी गए ना वहां, तो हनुमान जी भूख लगी माँ मेरे तो माँ सुंदर सुंदर फल लगे मेरे तो भूख लग गई, राक्षस खाता फिर माता मुर्गा इनका भाई मेरे को नहीं है, तुम राजी हो तो माँ तो राजी है, बच्चा खा ले तो माँ तो राजी होती है, और समझते माँ ही मारे के जाओगी जीवन में मना करने वाला को तुम जाओ राम जी वो याद करके मधुर फल कहो मीठे मीठे फल कहो काटू में, तो राक्षस मारने को लगे। तो रावण जी यहाँ कह रहा था, मैं तुमने कैसे राक्षस मारा कि जिन मुझे मारा तय मुझे मारा, जो मेरे को मारा उनको मैंने मारा, मैंने थोड़ा मारा कर रहा हूँ मेरे कोई बैर में, मेरे को मारते हैं शरीर सबको प्यारा लगता है कि तुमने वहां फटके नहीं लगी भूख लगी इस पर खाए तो बेसी तुम्हें कभी समाज से तोड़े दूंगा। तात्पर्य माँ के तो मन में आती है खिलाने की, अगर माँ आ जाए तो फिर खाने की मन में आती बच्चे के, माँ आ गई फिर करूंगा फिर कहूंगा, तो ऐसी मन बती है माताओं के मन में। तो वो माता बहन है तो राजी होगी ऐसा करके वो गए, तो माताएं बीच से मिलती जिस गांव में, अरे बेटा भोजन कर ले, हरे भोजन करा देती। महाराज सीता जी का भाई है, कोई मामूली छोड़ रही है का भाई है। तो ऐसे करके पहुंच गया अयोध्या, ये गांव कौन सा आ गया अयोध्या है, तो देखो बहन का गांव आ गया। अब गांव में प्रवेश हुआ, बताओ भाई हमारी बहन का घर कौन सा है। अब तेरी बहन का मैं क्या कौन है तेरी बहन, मेरी बहन सीता जी जानकी जी है मेरी बहन। तो मेरी बहन यूँ पूछा करते सब बच्चा पड़े अरे जानकी जी घर कौन सा, ऐसे पूछो मेरी बहन का घर कौन सा है, मेरी बहन तेरी बहन कौन है जाने। तो जानकी घर कौन सा है, जानकी जी कौन है जो राम जी को ब्याई गई। अरे भाई तो जानकी के घर क्या पूछा, राम जी का घर पूछ, जानकी घर कौन सा, जानकी नाम कुछ याद है, राम जी घर पूछ, राम जी घर कौन सा है, राम जी कौन है दशरथ जी, अरे दशरथ जी का घर पूछ, राम जी घर पूछे दशरथ जी घर पूछे। अरे मंदिर बहुत सही कोई मंदिर, ये जानकी जी कहाँ जो बैठे सामने, ये नहीं हमारी दुकान है मूर्ति थोड़ी है, वो साक्षात मेरी बहन है, मेरे से बड़ी बहन है, मैं छोटा भाई हूँ गोदी में रहने वाला भाई हूँ, मैं तो मेरी बहन है। दिन भर घूमो बड़ी उम्र लेकर घूमा, बहन से मिलूंगा बहन से ऐसे कहूंगा, माँ का ऐसा कहा करूंगा, बस दिन भर हैरान हुआ बहन मिली नहीं। तो रात्रि में अयोध्या के यहीं पर जाकर बैठ गए, बड़ी चिंता लगी। पहले तो माँ ने आनंद नहीं लिया, और माँ ने छुट्टी दी तो बहन नहीं मिलती, चिंतन हो रहा बहन का। ये भगवत प्राप्ति में जप ध्यान सब कारण है, मन चिंतन है मन में खुद के लगन होती है वो भगवान को प्राप्त कराती है, भीतर की लगन, वो लगन लगी, उस लगन के लगने से वहां नींद नहीं आवे बैठ आए। अब बहन नहीं मिली, बहन नहीं मिली, दिन भर जी महाराज उम्र भर के बचपन से मेरे छोटे पद से बहन का प्रेम मिली नहीं, ऐसी उत्कंठा थी। ये प्राणायण उत्कंठा सबरी के भी उत्कंठा थी, ये परमात्मा की प्राप्ति में लगन उत्कंठा खुद की भूख होती है तब भगवान मिलते हैं, साधनों से सहायता मिलती है, जप ध्यान सत्संग साधन से सबसे सहायता मिलती है, पर साथ साथ मिलते हैं खुद की लगन होने से, जिसमें नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहाग विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहाती नहीं, नींद आती नहीं, भोजन भाता नहीं, बात सुहाती नहीं, ऐसी दशा होती है, प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, भूख लगे खाने को मन नहीं करता, बात नहीं सुहाती, तब भगवान मिलते हैं। तो उसी ऐसी दशा है बैठा है चिंतन करता है, तो देखा जी तो उसे प्रकाश हो रहा है कि कैसे इनको प्रकाश में तमलव नहीं होता, समय भी नहीं है, प्रकाश हो रहा, प्रकाश में देखो कि हाथी सफेद, हाथी हाथी भी सफेद, हाथी अभी हाथी तो काला होता है तो सफेद हाथी ऊपर राजा रानी चढ़े हुए कोई होंगे राजा अपने क्या मतलब है। वो हाथी चलते चलते पास में आ गया, वो निशनरी लगी और बहन उतरी भैया प्रयाग दत्त, भैया प्रयाग दत्त नाम था, और क्या वो बहन अब तो बहन को पकड़ लिया, छोटा है तो बहन बड़ी है, ऐसे पकड़ कर अब लगा रोना जोर जोर से, अरे भैया बोलता क्यों, कहीं तू मिली नहीं, बिल्कुल मैं हैरान हुआ तू मिली नहीं। बहन पड़ी गुस्सा आया था, गुस्सा में क्या रोना है जो बोल कि भाई आप मिल गई, अब तो रो मत रोता क्यों हुआ तू मिली नहीं। तो बहन ने गोदी लिया, गोदी लेकर अपने अंतर से आंसू पूछे कि भैया रो मत, अब तो मैं मिल गई, अब क्यों रोता है। देखो माँ खुश है, कहाँ पर माल फेंक कर सर दिया, माँ ने ये दिया है कसार मगज ऐसे तो थोड़ा जान की ने नहीं दिया और बांध कर ले गया, भैया ये तू खा लेना अच्छी बात। इतने में देखा रामचंद्र जी की तरफ, तुम जानते नहीं कितने हमारी जीजा जी कितने सुंदर है, कितने श्रेष्ठ है। फिर बहन की तरफ देखा, बहन कितनी सुंदर है, ये लोग मिजाज करते हैं छोरा की बहन है, मेरी बहन के सवाल किसी की बहन नहीं है, मेरा सब ऐसी चीज है, मेरी बहन कितनी सुंदर है और मेरे जीजा जी कितनी सुंदर है। राम जी ने पूछा क्यों प्रहलाद जी, ये अद्भुत जी कहते हैं सारा ठहरा। माँ जी खुश है, सास से समाचार पूछे, माँ जी खुश है, तो मस्त हो गया, आनंद बहुत हो गया। ऐसे बहन के साथ मिले, जीजा जी मिले, मदद लिया, अब क्या हुआ भगवान की दया से बाद में भगवान हो गया अंतर ध्यान और ध्यान में बहन मिल रही है, बैठ गया सब साहब, बहन बहनों से मिल रहे खूब। सूर्य ऊपर आ गया, रात्रि में बैठा था सूर्य ऊपर आ गया, तो संत गए सोच देखा एक बच्चा है, इस चेहरे में बड़ी प्रसन्नता है, गांव के बीच बैठा है, कोई न कोई चमत्कार है, कोई संत नहीं, भगवान ने कृपा की है, जगाया तो बहन का भी बहन ज्ञान हुई जुड़ा, बहन का भी कौन बहन कहाँ गया वो, मैं तो जनकपुरी से आया हूँ, प्रयाग भक्त मेरा नाम है। बहन सीता जी थी अभी यहाँ थी मेरे पास में थी, मेरी बहन सीता संगा भाई बड़ा करते होगा जो दर्शन हुई, तो चलो वहाँ हमारे कुटिया पर चलो भोजन करो। महाराज ले गए वहां सोच नाना भी किया, इतने में बाहर से आवाज आई, कौन खटखटा कौन है बाहर निकलो, दो माइयों खड़ी सोने का थाल है, मिठाई भरी हुई, और कहे महाराज आज ठाकुर जी का पूजन था हमारे यहाँ, तो ये पिछड़ मिठाई आप लीजिए संतों को पहुंचा दो, भगवान का पूजन करो जो प्रसाद बोलो पहुंचाओ संतों में। वे थाल लेकर भीतर गए तो थाल अपने पात्रों में मिठाई खड़ी, उस थाल लेकर सोने का थाल रंग भरे हुए, वो थाल लेकर बाहर पहुंचे बाहर कोई नहीं, कोई है ही नहीं घर, ये क्या बात है। ओ समझ वाला, ये बहन ने अपने भाई की पहुनाई की है, भाई का तो ऐसा था किसी होता, ये तो बहन के ये जानकी जी है वहां से आया है, ये थाल दिया है बहन ने भैया को दिया है, ऐसा मान कर दिया। फिर के महाराज आपके बहन के यहाँ से मिठाई आ गई, भोजन आ गया, भोजन करो तुम्हारा संत सब भोजन करो, सब संतों को मिठाई पहुंची गई, भोजन किया तो इतने मस्त हो गए संत, क्योंकि ऐसा भोजन तो कभी मिला ही नहीं, जान कीजिए आपका भोजन में बाबू ही है, तृप्त हो गए संतों के कलेजा नेत्र सब ठंडे हो गए, मस्त हो गए प्रेम में, मतवाले हो गए, यार तो प्रसाद तो आज मिला है भाई, माँ के हाथ का भोजन तो बड़ा प्यारा होता है ना। पंक्ति चली गई, इसके बाद त्याग जी महाराज अपनी फट्टी सी चदर थी लेकर चलने लगे, तो बाबा जी ने कहा वो थार उसको लिख चदर ये बांध लिया ले जाओ, कि मैं कैसे ले जाऊं कि आपके बैल ले गया, बेटी के घर का चीन माँ रखेगी, बेटी को तो बेटी है माँ लेती है, भाई वो बुलाना देगी, मैं मिल जाऊंगा, मां मालिक ही मेरे को तो बेटी घर से क्यों लाया। अरे संत बेटी नहीं, जगत जननी है, सब जगत की माता है, सबका पूर्ण करती है, सबको भोजन देती है, सबका पालन ये माँ करती है दुनिया का, कि दुनिया की माँ हो पर मेरी माँ की जो बेटी है दुनिया की शायद माँ हो, मैं मिल जाऊंगा। संत गिर भी हम क्या करें, इतनी कीमती सोने का था, हम क्या करें, हम तो साधु बैठे क्या बोलते कहते कि कुंड में डाल दिया और पहुंचे माँ के पास। अब माँ के माँ बेटा को सत्संग, वो बहन की बात सुने हुए और वो बेटी की बात सुने, दोनों को बड़ा आनंद हो रहा है, जानकी जी की बात है रात मिल हो रही है मस्ती से। अब छोटा वो खेलने को जाता है तो कहते मेरी बहन के समान किसी की बहन नहीं है, इतनी बड़ी हमारी सुंदर बहन है, इतनी बड़ी धनवती है, ऐसे श्रृंगार है, ऐसे गहने हैं, ऐसे कपड़े हैं, उनमें नखले बराबर नहीं है, सब माता बहना मेरे घर के, मेरी बहन इतनी सुंदर है, रहने लगे। ऐसे होते हुए एक वो माँ मर गई, माँ का फिर शांत हो गया, अब अकेले रह गई। एक ब्राह्मण थे, भगवान राम जी के विवाह में जमीन दी थी, सुनते वो जमीन अभी तक ब्राह्मणों के पास है। एक ब्राह्मण थे, उनकी एक कन्या ही थी, तो प्रयागृत को देखा मिल गया, दो गोत्र और ठीक विवाह कर मिल गया, तो वो कन्या जी बड़ा बल बड़ा अच्छा है। तो ब्राह्मण ने प्रस्ताव रखा कि महाराज आप ब्याह कर लो, मेरी कन्या देता हूँ आपको, ब्याह कर लो। कहने हम ब्याह नहीं करेंगे, वो ना देते थे, पिता का मन होता है कि मेरी पुत्री यहाँ सुख पाएगी, ऐसा बल मिल गया है तो कैसी पुत्री सुख होगी हमारी, महाराज ना देते। दादा तंग किया तो वहां से चल दी, अब जाऊंगा, माँ तो है नहीं, अब बहन के यहाँ जाऊंगा, बहन को कह दूंगा कि बहन मेरे को लोग तो ब्याह कर, मैं ब्याह क्या करूँ, मैं तो आप जो हूँ भाई होगा, मैं बहन ब्याह करूँ। चल दिए अयोध्या पहुंचे, अयोध्या वही बैठ ले जाकर अब ढूंढने किया, तो भैया आई बहन आ गई, अब आवे कभी बहन आई मिले तो माँ तो रही नहीं, और लोग मेरे को तो ब्याह कर रहे, तो भैया क्यों ब्याह, तेरा मन नहीं करो, फिर कर रहा हूँ ब्याह कर रही ना, मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं तो माँ बहन के पास तो सो यही रहे, माँ नहीं है फिर तो खुशी का ठीका कर रही, अब तो बहन यही रहेगी। अब रामचंद्र जी लीला मिलने लगी उस सबको, अयोध्या पुरानी दिखती है अभी तो, ये 200-300 वर्ष की, 200-250 वर्ष की बात है। उनको तो राम साक्षात राम जी के राजदीश है, और राम जी जा स्नान करने के लिए घोड़े पर चढ़े हुए, तो हाथ में छत्ता दिया है, पास में दौड़ के चले जा रहे, क्या है हमारे जीजा जी की छत्ता करता हूँ, छाया करता हूँ, ऐसी लीला दिखे। अब जिस गली में जावे छोक रहे कि तेरे मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी हो गए, जगत जननी का भाई हुआ तो मामा ही हुआ, माँ का भाई है, सब थोड़े थोड़े मामा जी बैठ जाते बीच में, और मान जी बैठ जाते चारों तरफ, मामा जी आए, ऐसे करने लगे। ऐसे करती हुए संतों ने कहा महाराज जब साधु बन जाओ तो उनके चेला बन गए, और नाम हुआ प्रयागराज जी। और मानस लीला होते होते राम जी को वनवास हुआ, वनवास हुआ तो अब लगे बल बजाने, आप तो वनवास में गए सो गए, मेरी बहन को क्यों ले गए, खबर दूंगा बहन को वनवासी को मिली, मेरी बहन जनक में क्या जैसी है भिक्षोक चले, ऐसी मेरी बहन है, नौकर के वो पड़ा ऐसा सुकून शरीर मेरी बहन का, वो जंगल में कैसे घूमेगी, पैसा सोचती थी कांटे लग जाएंगे, ऐसी यादगार में वो रो पड़े एकदम ही, कितना सुकून मेरी बहन का शरीर वो जंगल में गए, अब क्या करें। तो कुछ पैसे बटोरने लगे, बैठ लगे पैसे लिए, तीन खाट बनाई, तीन पदन्ना तीन ऊपर सीर, ये बना और फिर खाटके और खाटके कर गए तीन जूतों की जोड़ी, दो मर्दाना एक जनाना, ये बना कर गए रख सिर पर उठाए। प्रयागराज जी कहाँ जा रहे हो? कि चित्रकूट जा रहा हूँ। वहाँ सीकर वहाँ कहाँ सोएगी? जंगल में कहाँ मिलेगा? खाट में जाता हूँ ये बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए। उस पैरों में पैदल चलते कांटे घर पे है, तीनों के लिए जूती बनवाई है। फिर कोई बदलाव नहीं चाहिए हमारे सामग्री पर। चित्रकूट पहुंचे, अब चित्रकूट में लगे ढूंढने तो भगवान मिले नहीं। कहते वो छिप गया, मन में सोचता है कि राम जी है डर गए, मिलते क्यों नहीं तो डर गए। क्यों डर गए? कि बैल को ले जाएगा पीछे, इस बात से डर तो मिलते नहीं है। एक राम सैया के पास में बैठे थे तो इधर से देखा आ रहे हैं, बड़ी खुशी आई और ठाकुर का आप आ गए। बहन आई, बहन ने प्यार किया, हंगे लगा तुम भैया हम वहां हमें आ गया। और वो तीन खाट बचा दी दो भाइयों के इधर और अपनी बहन के लिए उधर। अब खैर खाट पर बैठो, जूती पहनो। बहन भगवान ने स्वीकार कर लिया। अब वहां से चलने लगे तो कि साथ में क्या करोगे? कि जहां रात भी मेरे होगे वहां खाट बिछा दूंगा, सिर उठा साथ चलूंगा। राम जी बोले कि हम तो चौथे आदमी को साथ में नहीं रखते, तीनों खाट पर हम सोते नहीं, जूती हम पहनते नहीं, चौथा आदमी साथ में रखते नहीं। तब लगे बड़े बड़ा बड़े बड़े तपसी बने हैं, चौथे को नहीं रखते, खाट पर भी सोते नहीं, जूती पहनते नहीं, बड़े तपसी बने हैं। ऐसी बने मैं तो बैठ कर जाऊ। बैल से लगे लड़ने के, तू क्यों आई? बनवास तो राम जी को दिया है, तेरे को तो सीधे बनवास दिया नहीं, क्यों आई? कहते भैया महाराज के दर्शन करने से हमारा बहुत आनंद मिलता, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। भोली बहन जैसी माँ ऐसी बेटी, भोली समझ यह जंगल में कोई सुख है भैया, सुख आता है। बातों में आ गई बस बहन की साथी हो गई। तू जल चल मेरे साथ, मैं पहुंचा दूंगा। सिंह बाघ आदि की पर कोई डर की बात नहीं है, मैं साथ में हूँ। तू कह दो अयोध्या पहुंचा दू ले जाओ। पूछा मैं भैया मेरे को महाराज के साथ रहने में बड़ा सुख मिलता है, काय का सुख है? बात हमारी हुई है, मेरी फिर में आ गई। आप बहन को क्यों लाए? राम जी को पूछते मेरी बहन को बनवास में क्यों लाए? तो मैंने तो कहा जा रहा हो, ये कहते मैं साथ चलूंगी, हम क्या करें? हम तो लड़के नहीं थे। अरे बहन से तुम क्यों आई, जंगल में क्यों आई? ये बड़ा शोक है, ठहरने के लिए जगह नहीं, वृक्षों के लिए कोई जगह नहीं है, सोने के लिए कोई खाट नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बड़ा शोक है। भोली है भोली, समझती बहन समझती, समझदार तो भाई है। किलो की रचना कर रही है वो भाई जी में से भोली है बहन। कहने भैया मैं तो नहीं चलूंगी, मैं तो मना भी साथ रहूंगी। तो भैया क्या आप चलो? कहने हम नहीं, हम 14 वर्ष का बनवास से पहले कैसे चले? तो देखा राम जी भी नहीं चलते, सीता जी भी नहीं। लखनदास जी बोले क्यों प्रयागराज? मैं चलू? हाँ आप चलो, बड़ा खुशी का। कैसे ले जाओगे? खाट पर बैठ जाओ, उठा लो, हंसने लगे। राम जी बोले कि आपसे जिंदगी कर रहा है लेकिन जाएगा नहीं हमारे साथ। ये छोटा कुमार भी बड़ा खोटा, क्या कर मच गया? क्या कर छोटा कुमार बड़ा खोटा है, चल रहे साथ में। प्रयागराज जी आप जाओ, खाट पर आप सोओगे उसमें हमारे को आनंद ज्यादा आएगा, हम सोए इतना हमारे को सुख नहीं होता। तो आपके सोने से ले जाओ जाओ और अयोध्या चले जाओ, आप साथ में नहीं रखते। अब क्या कर दे, काट कर खा कर दे। चले वहां से चले, पहुंचे ठीक खट पहुंच गए अयोध्या। कहते साथ में तो रखा नहीं, मेरे को फेंक दिया, मेरे को फेंक दिया है। अब एक नीम के नीचे में खटियारे थी, तीन खटियारे लगी शिक्षा करे खाद पड़ी रहे रात में दिन में, क्यों राम जी की प्रसन्न वैसी में है तो राम जी की प्रसन्न वही काम करना। तो नीम के नीचे खटिया रखे खटिया नीचे करवा प्रयाग दास अलमस्त सुबह राम लला का सरवा राम लला का सरवा मामूल हर हर के सुबह कर बिगड़ने सुबह तो ही को जब महेश सुबह रही प्रयागदास पड़वा के कारण रघुआ बन गए भगवान अपनी भाषा में कविता कई वसन वाली ऐसे संत हुए बड़े अलमस्त हुए। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं बड़े प्यारे होते हैं सुना हो गया। इस तरह से भगवान में प्रेम कैसे हो ये प्रश्न रहा, ज्ञान से भी बढ़कर प्रेम माना है लोगों ने, वो प्रेम कैसे हो अपना मन से। मेरी बहन है, मेरी बहन है, हमारी माँ की बेटी है, लोग जगत जन जगत भी हो जाए कुछ भी हो जाए पर मेरी माँ की बेटी है ना, बहन है। तो ऐसे ठाकुर जी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, छोटा भाई मानते हैं, गोद लेते भैया रूपर तो अपनापन है। ये वास्तव में भगवत प्रेम का जनक है, प्रेम पैदा होते हैं तो भगवान को अपना मानो, भाई मानो, पिता मानो, पुत्र मानो, बहन माता है पुत्र मान सकती है, भाई मान सकती है, पति मान सकती है, मित्र मान सकती है, मालिक मान सकते हैं, भाई कोई भी चाहे, एक नाता भगवान से मान लो, जैसे भगवान प्यारे लगे मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे फिर कोई बात बाकी नहीं रहती।